ओम शांति। आज है सोमवार, शिव बाबा का दिन। ऐसे हर दिन बाबा का है, बाबा के बिना कोई दिन नहीं। बाबा जब परम धाम से आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो क्या करते हैं? कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं। बच्चों को कहानी सुनाई जाती है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो उसको कहानी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? एक राजा था, एक रानी थी, उसकी एक राजकुमारी थी। वो जंगल में भटक गई, फिर उसको ढूंढ के लाए, राजा ने उसको राजभाग दे दिया। सुनाते हैं ना ऐसे? बाबा कहते, तुम्हारी भी तो यही कहानी है। एक है बाबा, एक है दादा, हम भी जब भटक जाते बाबा हमको ढूंढ के लाते और राजभाग दे देते। कहानी है ना। दूसरी बात बाबा ने कही, बच्चे जब बैठते हैं तो चिंतन चलाते हैं। क्या चिंतन करते हैं? सतयुग में 8 गद्दियां होंगी, 9 लाख प्रजा होगी, तो एक राजा तो राज नहीं करेगा, एक बड़ा राजा होगा, उसके अंदर में और छोटे राजाएं होंगे, कितने होंगे? फिर त्रेता में 33 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी, उस पर एक राजा तो राज्य नहीं करेगा, तो उस समय कितने राजाएं होंगे? बाबा कहते, इस चिंतन में जाने की तुमको कोई जरूरत नहीं। जो होगा वो तुम जब कर्मातीत बनते जाओगे तब तुमको साक्षात्कार होगा, तब ये सारा चित्र स्पष्ट होगा। तब तक तो तुम योग लगाओ और कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। तीसरी बात बाबा ने बताई, बहुत मजेदार है। श्रीनाथ द्वारा में 56 प्रकार के भोग लगाते हैं ना, बहुत वैरायटी भोग लगाते हैं, और मंदिरों में भी लगाते हैं, अन्नकूट होता है, बहुत वैरायटी भोग होता है। समझते हैं देवताएं नाराज न हो जाए। बाबा कहते, तुम नाराज होते हो? देवता कौन बनने वाला है? देवताएं कहाँ है? अभी हम ही हैं और हम ही देवता बनेंगे, तो इसमें नाराज होने की तो कोई बात नहीं। तो हमें कोई वैरायटी भोजन, ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी तो हम नाराज तो होते नहीं। चौथी बात बाबा ने बहुत सुंदर बताई कि गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब ये नदियां तो सतयुग से चली आ रही है, अगर वो पावन करती तो फिर पतित बनते ही क्यों? सतयुग में तो इन्हीं नदियों से नहाएंगे ना, तो वो तो सतयुग से नदियां हैं। इसलिए पतित पावन शब्द ज्ञान सागर से शोभता है। ज्ञान सागर, पतित पावन, परम पिता शिव परमात्मा, वो शोभता है, वो सही शब्द है। और लास्ट में अर्जुन और भील की कहानी सुनाते हुए बाबा ने सावधान किया है कि तुम्हें 8 घंटा योग में रह सको इतना पुरुषार्थ करना है। तो ये लास्ट होमवर्क है, हमें कितने तक जाना है। तो सुनेंगे बाबा के रमणीक और रहस्यमुख शब्द, बाबा के ही शब्दों में। आज है 17 अगस्त 2026। मीठे बच्चे बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? जानते हैं ड्रामा है, फिर भी लक्ष्य कौन सा रखना है? उत्तर है, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना है। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। अब सुनो कहानी। ये दोनों कौन कहते हैं? ओम शांति कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब ये है फिर नई बातें, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे अभी कहानी आगे क्या सुनाई, एक है बाबा एक है दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। कहानी यहां से शुरू हो रही है। उन्हों को कौन पढ़ाते हैं? ब्राह्मणों को या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोतरे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं। बच्चे तो परम धाम में थे तब भी शिव बाबा के बच्चे थे, अभी संगम पर एक नया रिलेशन है, पोतरे हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो हमारा पिता हो गया ब्रह्मा, तो फिर शिव बाबा को दादा कहते हैं, वैसे वो हमारा पिता है। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। किस बाप से? निराकार बाप से, शिव बाबा से। आधा कल्प वर्षा पाते हो फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। ये कहानी फिर आगे बढ़ी। शिव बाबा के बच्चे बने, ज्ञान लिया, फिर श्राप लगा। नीचे उतरते आए, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा अब पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। अभी हमारे पर कौन सी दशा बैठी है? राहु की दशा खत्म हो गई। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो पांच विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? कहानी आगे बढ़ी ना, जब बच्चे काले हो गए, राहु का श्राप लग गया, तो फिर क्या करते हैं? कोई बच्चा गुम हो गया तो फिर उसको लाने का तरीका ढूंढते हैं ना। तो फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य मां चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। जब ग्रहण होता है, जब ग्रहण खत्म होने वाला होता है, तो वो निकलते हैं हर घर में कि दे दान तो छूटे ग्रहण। यहां बाप तुमको कहते हैं पांच विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य कौन सा विकार है? सारे विकार कहां से आए? मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। ये तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। जो एकदम शुरू में आए वही 84 जन्म लेंगे, बाद वाले तो लेंगे नहीं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। सबसे पहले बाबा से कौन मिलेगा? बाबा से ज्ञान कौन लेगा? सबसे पहले वही लेंगे जो पूरे 84 जन्म लेंगे, जो सतयुग के आदि से आएंगे। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब हो जब सतगुरु मिले दलाल। बाबा कहते पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, याद है ना सबको? फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। पहले तो गाते थे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते थे। अभी इसका अर्थ हम समझते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बैठ बाप समझाते हैं। पहले की कहानियां, कहावतें, स्लोगन जो भी चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग में वो लोग गाते हैं, उसका अर्थ अभी हमें पता पड़ता है। चक्र तो बिल्कुल सहज है, अभी कलयुग और सतयुग का संगम है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये भी तुमको निश्चय है? क्या निश्चय है? किस निश्चय से हम बैठे हैं? सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुक चुक कर जाएंगी। गर यह सब के कयामत का समय है, आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए, संगम पर कब तक खड़े हैं? जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरे तरफ कितने हैं? एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ है तुम थोड़े से, पांच पांडव ही तो रहेंगे ना, वहां अक्षौणी सेना है। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं? निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जब निश्चय बुद्धि विजयंती बनेंगे तो क्या होगा? जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे, अर्थात विष्णु के राज्य में आएंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला, वो होते तो वो भी रुद्राक्ष के ही जैसे हैं। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है, माना वो आंख नाक ऐसे बने हुए होते हैं, वो रुद्राक्ष अलग प्रकार का होता है। ये निशानी है, वो जो होते हैं वो रुंड माला है और ये रुद्राक्ष की माला है, विष्णु के गले की माला, विजयंती माला। हम आत्माएं ही जाकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे, फिर यहां आएंगे नंबर वार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16108 की भी है। बाबा ने इसका सुना के फिर इस चिंतन से मुक्त किया है। अब 16000 है या 5-10 हजार है उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती है, जो वो उसको सिमरना है इसलिए वो अंक देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो कि कितनों की माला होगी, कौन बनेगा, क्या होगा, ये सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे, 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं है, माना इस बातों में जाना नहीं है। वही बताया ना कैसे लोग सोचते हैं, इतने 33 करोड़ प्रजा में एक राजा थोड़ी राज्य करेगा, कितने राजाए होंगे, कोई कहेगा इतना होगा, कोई कहेगा इतना होगा। बाबा कहते हैं ये पूछना नहीं है, इन बातों में जाना नहीं है। बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं, सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, विनाश होगा तो लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे एक्यूरेट नहीं कह सकते। लास्ट में विनाश होगा तो टोटल तो सब आत्माएं खत्म नहीं हो जाएगी, जीरो तो नहीं होगा, तो लास्ट में कितनी पवित्र आत्माएं बचेंगी बाबा कहते वो एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार होगा, उसमें सारे रहस्य स्पष्ट होते जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। ये तो कितने साल पहले बाबा ने बताया, अभी तो हो ही रही है। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर अति के बाद अंत होता है ना, कोई भी चीज ऊपर जाती है तो बहुत ऊपर जाके क्या होती है, फिर रिवर्स तो होती है। तो बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। कैसी सस्ताई होगी? सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, इतनी सस्ताई हो जाएगी। सब खानियां आदि भरपूर होती जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं, लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, 21 प्रकार, 56 प्रकार, 108 प्रकार, 1008 प्रकार भी लगाते हैं। वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं, खुद ही खाएंगे ना, मूर्तियों को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके आगे रखेंगे, फिर खुद खाएंगे, कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं, तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, होते हैं? ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी तो हम कहां नाराज होते हैं। जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है, तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है, हम भी ड्रामा में बंधे हैं तो बाबा भी ड्रामा में बंधा है, जब उसका समय होगा, पार्ट होगा, तभी आएगा। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है, हम कोई चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं हो सकता है, बाबा को जल्दी बुलाना चाहे नहीं बुला सकते हैं। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है, अभी तुम गैलप कर रहे हो, कर रहे हैं ना, सब समय को देखते हैं तो पुरुषार्थ तेज करते हैं ना। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, ये भी जानते हो हम बहुत किस्म के आएंगे, जो और धर्म में बदली हो गए हैं वो निकल कर आते रहेंगे। हम सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, जो चले गए हैं दूर दूर उनको वापस लाते हैं, ढूंढते हैं कि कौन हमारे बाबा के बच्चे बिछुड़ गए हैं, उसको इकट्ठा करो। तो आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे, बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उनको भी पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, फिर वो देवता धर्म में वापस आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। कितने साल पहले बाबा ने बताया है, अभी कितनी वृद्धि हो गई है? एक दो को सामने मिलेंगे पहचानेंगे, कोई एक दो को जानते ही नहीं। पहले तो छोटा परिवार था तो एक दो को सामने मिलते थे इतने खुश होते थे, अरे ये हमारे परिवार का मिला है। अभी तो बेहद का परिवार हो गया। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। जब समझेंगे ना कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारियां कहती थी विनाश होगा विनाश होगा, ये तो राइट बात है, तो फिर बाबा के बनते जाएंगे। ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, जाड़ फुल हो जाएगा यहाँ का, फिर वापस जाएंगे। अभी जाना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि ये जाड़ फुल नहीं हुआ है, अभी और पत्ते टहनियां ऐड होती जाती हैं। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो, इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। देखो अभी बाबा क्या कहते हैं, संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। वो नदियों का मेले को संगम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं वास्तव में संगम ये गंगा सागर का है, सब नदियां आकर के ज्ञान सागर में मिलती हैं। वो गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग का। और ये है, ये कौन सा संगम है? ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, उस नदियों को पतित पावन अक्षर बाबा कहते नहीं लग सकता, ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वो समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती है, तो अगर पतित पावनी है तो सतयुग त्रेता में भी इन नदियों में नहाया, तो फिर पतित क्यों बने? आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती है, प्रकृति भी तमोप्रदान, सागर भी तमोप्रदान हो पड़ा है। कैसे तमो प्रधान हो गया है, सागर भी नदियां भी सागर भी। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देगा। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, वो भी कहां रहेंगे, सागर के किनारे नहीं रहेंगे, यमुना के कंठे पर रहेंगे। दिल्ली परिस्थान थी फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। वो सीढ़ी में दिखाते हैं ना परमधाम कैसे धीरे धीरे खाली होता जाता है। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं, बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं ना, अरे हम तो इस संसार में एक्टर हैं, ये संसार नाटक है, ये सब बोलते हैं, लेकिन ये नाटक कितने साल का है, अभी कब तक रहेगा वो नहीं जानते। कहां 84 जन्म, कहां 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, सारी कहानी सुनाई, नाटक का स्टोरी सुनाई, फिर लास्ट में सार क्या आया। बाप कहते हैं, मन मना भव। बाप को याद करना है। शिव भगवानुवाच्य, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं, तो देवताओं की महिमा क्या है। सब देवताएं तो शिव बाबा की रचना है ना, तो रचना की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। बाप की क्या महिमा है, वो सब में सागर है और ये संपन्न है, तो सागर में और संपन्न में फर्क तो होगा ना। वो सागर से ही कुछ चीजें लेकर के संपन्न बनते हैं। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वो है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। ये सब में सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो महिमा की, वो आएंगे ज्ञान देंगे तब तो उसकी महिमा सार्थक होगी ना। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका जन्म दिव्य नहीं कहेंगे। ये भी बच्चों को समझाया है, एक होता है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। जिसको ही भगवान के याद करते हैं, और तीसरा संगम पर, कितने बाप हैं, तीसरा भी है संगम पर अलौकिक बाप। ये फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, जब पारलौकिक बाप शिव बाबा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। कैसे आता है, उनके द्वारा ही तो करते हैं, तो वह इंस्ट्रूमेंट बीच में बन जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे, आजकल तो इतने भी नहीं होते। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती है हम सब ब्रदर्स हैं, वो तो पूरे विश्व की आत्माएं उनके बच्चे हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है, ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहता। कहां? सत्युग में नहीं रहता कि हमको किसने अडॉप्ट किया और हम सत्युग में कैसे आए, हमको कितने बाप हैं, वहां कितने बाप याद रहेंगे। कि प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वो परलौकिक, ये दो को तो समझ लेते हैं, पर यह है संगम योगी अलौकिक बाप, उसको केवल हम ही जानते, हम ही पहचानते। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं, पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप, सतयुग त्रेता में एक ही बाप, दूसरा बाप कहां से आएगा, कब से आएगा? द्वापर से। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं सतयुग में, हे भगवान हे परमात्मा नहीं कहेंगे। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब बाप दो होते हैं, संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने हो, जानते हो ये अलौकिक बाप है, अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। अभी दुखी होते हैं तो हे भगवान हे परमात्मा करते रहते हैं, सतयुग में तो ना दुखी होंगे, ना कोई समस्या आएगी, ना कोई चिंता होगी, तो याद ही नहीं करते। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज बात है। क्या सहज बात है कि दुख में याद करते हैं, जब सुख आ जाएगा तो कोई याद नहीं करता। ऐसे भी कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरण कर लिया तो दुख काहे का होए, अगर वहां भी याद कर लेते तो नीचे गिरते ही नहीं। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में दो बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो जो फिर देवता बनेंगे, विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आंखों से देखेंगे, क्या देखेंगे इन आंखों से, हम क्या देखेंगे अंत समय में? बॉम्ब्स छोड़ेंगे वो हम देखेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना, जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। जब 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एक छोटा सा बेबी बॉम्ब फेंका गया था, उसमें कितने लाखों लोग मर गए, 2-2.5 लाख लोग मर गए। एक हिरोशिमा में ही कहते 1,40,000 लोग मर गए थे और बाकी फिर नागासाकी में दूसरा फेंका, यही अगस्त मास में 6 या 9 अगस्त में तब वहां बॉम्ब्स फेंका था। अब यहां लड़ाइयां लगती रहती है, खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं, लोग खुद भी कहते हैं ना हम तंग हो रहे हैं, अब कुछ होना चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सेकंड में सब खलास हो जाएगा, चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। ये तो बॉम्ब्स हैं, एक छोटी सी आग लगती है तो कितना पूरा गांव खत्म हो जाता है, शहर खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये तो बॉम्ब्स हैं, आग भी लगनी है, बॉम्ब्स भी गिरेंगे आग भी लगेगी। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। मैं अभी देखो लास्ट मंत्र सुन लो बाबा का, शुरू में भी कहानी सुनाई, अभी अंत में भी कहानी सुनो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है, अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहां बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में ये रिजल्ट तो ठीक नहीं है, माया के तूफान आते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। कितना पुरुषार्थ करना है? जो हमारे चार्ट में दिखाई पड़े 8 घंटा याद, सिर्फ 8 घंटा बैठे ऐसा नहीं, 8 घंटा याद। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है, ये भी बाबा बतलाते हैं। जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वो भी इतना याद नहीं करते, घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल दिया होगा, बताया ना अर्जुन और भील की कहानी। भील माना एकलव्य था, जब द्रोणाचार्य अर्जुन को ये विद्या सिखा रहे थे बाण की, तब एकलव्य भील था, उसने फिर उसने जब ये शिष्य स्वीकार नहीं किया तो अकेले जंगल में अभ्यास किया और अर्जुन से भी तेज गया। तो बाबा का कहना है घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं, अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना, मेहनत है। लेकिन अगर अर्जुन नहीं सीखता द्रोणाचार्य से, ये भील एकलव्य ने देखा नहीं होता तो वो भी कैसे मेहनत करता, देखा तब तो किया। ऐसे घर में रहने वाले भी कहां पुरुषार्थ करेंगे, जब हमको देखा समर्पित देखा तब तो देखकर किया उन्होंने भी, तब तो वो भी बाबा के बने, पहले तो हम बने फिर घर में रहने वाले बने, हम याद करेंगे तो घर में रहने वाले भी और तेज करेंगे। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़े ही लगेगी, तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा सुना ना, आदि में भी कहानी अंत में भी कहानी। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सार क्या था? कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, आज बाप दादा का वरदान तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। विजयी कैसे बनेंगे? ये 3 शब्द स्मृति में रखेंगे, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। उसका क्लैरिफिकेशन है, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। 3 शब्द बताए ना, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तो क्या तोड़ना है? कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वो सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है बहुत अच्छा, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी क्या है? सदा क्लीन और क्लियर। यह अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त कीर्तन असीम की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी, इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।